means corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल होलसेल रेट पाकिस्तान इंडिया और मिडल ईस्ट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस अफोर्डेबल इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स
Airwing Travel and Tours 905-272-2300
905-272-2300
airwings.ca Open Mic Cafe and Cuisine जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाई शिनवारी गोट कढ़ाई निहारी हलीम पाए बिरयानी सीख कबाब चिकन टिक्का शवरमा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन वही देसी अंदाज और वही देसी जायका 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3 ऑर्डर नाउ कॉल 416-526-6800
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस पैराडोंटिक्स ऑर्थोडोंटिक्स डेंटल इम्प्लांट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं कोई मसला नहीं स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 905-232-5678 मिसिसागा 416-757-9999 स्कारब्रो
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे जीटीए में दो लोकेशंस मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201 इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205 कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 905-291-4455 905-291-4455
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा
कौन से काम
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ
बस इतनी छोटी सी बात पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी
मुझे उनका एड्रेस बताओ मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ
जी जी बिल्कुल पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन Pyle Jewelers. Call करें 905-790-7879. That is 905-790-7879.
एशियन फूड सेंटर की सारिया ही लोकेशंस ते 27 जून तो 7 जुलाई तक लग चुकी है कनाडा डे सेल वी पौंड स्वर्णा होल वीट आटा 10.99 दो पौंड वाग बकरी टी 9.99 10 पौंड इंडिया गेट रोजाना राइस 11.99 नानक देसी घ्यो 25.99 341 ग्राम नानक पनीर 4.99 एशियन फूड सेंटर की सारिया ही लोकेशंस ते तुसी ताजे फल फ्रूट सब्जियां भांडे अते मिठाइयां भी ले सकदे हो एशियन फूड सेंटर कॉल कर लो 416-740-32
ਐਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
बेस्ट विल बी ऑन एस चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 770 AM डायल पर साजो आवाज प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और मेरे साथ अब शामिल हो गई हैं शाजिया मलिक साहिबा। और न्यूज का सेगमेंट शुरू हो गया अब से लेकर 7 बजे तक। गर्मा गर्म खबरें, धमाकों की खबरें, वायलेंट मार दिया, जीत गया, हार गया, इसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, उसकी फिल्म हिट हो गई, ये सब गर्मा गर्म खबरें पकाकर प्रेशर कुकर में ले आई हैं शाजिया मलिक साहिबा। प्रोग्राम में उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहु। शाजी जी कैसी हैं?
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकात। जी नाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आपको कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो?
अब तक तो जिंदा हूँ।
हाँ।
आगे का पता नहीं।
हाँ।
चलते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं कि
क्या आगे। तुमने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है। हाँ। अगर जिंदगी रही और आप जिंदा रही, लेकिन तुम्हारी जो है ना ख्वाहिश, कुछ मुझे लग रहा है ऊपर वाला भी सुन नहीं रहा है।
नहीं, मैंने है? बात एक ही की है। हाँ। अगर आप इस पर नोट करें।
हाँ।
कि जिंदगी रही।
हाँ।
और आप जिंदा रहीं, यही कहा ना मैंने?
नहीं, तुमने लेकिन इशारा अपनी तरफ नहीं, नहीं किया था। तुमने इशारा सिर्फ मेरे सामने ऐसे ही किया था।
देखिए, इशारा इशारे। हाँ। पे ना जाएं आप।
अच्छा, इशारों पे ना जाऊं?
नहीं नहीं।
अच्छा अच्छा,
आप
आंखों ही आंखों में इशारा।
आप बात को समझें।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बात समझाएं।
बात ये थी,
प्रोफेसर साहब, बात समझाएं।
जिंदगी रही और आप जिंदा रहें।
अच्छा,
तो कर फिल्म मिलेंगे।
हाँ, ठीक है,
बात तो एक ही है।
एक ही बात,
मैंने भी यही तो कहा कि जिंदगी रही।
जो है ना, मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं, आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो।
थैंक यू।
हाँ, इसलिए मैंने कहा चलो आज का दिन, वैसे भी जुमे का मुबारक दिन है,
जुमा
तो मुबारक, तो तुम्हारे साथ आज लड़ाई ना ही की जाए, हैं? वरना तो तुम्हारी कोई बात जो है ना मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगती।
नहीं लगती?
नहीं,
माइक बंद कर रहा हूँ।
माइक बंद करोगे तो तुम्हारी अपनी जाब जाएगी, लोग बोलेंगे तुमने काम सही क्यों नहीं किया, कीबोर्ड पे बैठे थे।
नहीं नहीं नहीं
नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा
ही। गलत फहमी आपकी?
नहीं, कोई गलत फहमी नहीं,
बिल्कुल। देखिए, मुझे एक बात बताइए।
हाँ।
एक न्यूज ही है ना।
हाँ।
मैं पढ़ दूंगा।
अच्छा। कर लो, कोई मसला तो नहीं है।
तो माइक पे माइक बंद करना का मसला नहीं है?
मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं तुम्हें पूछेगा?
नहीं, कौन पूछेगा?
अच्छा,
कोई कुछ नहीं कहेगा। और वैसे ही आपको बता, मेरे तो
फैन बहुत है।
ह्यूस्टन?
हाँ।
ह्यूस्टन से वो खातून, क्या
कह रही थी, खूबसूरत आदमी है,
नाम था नैयर, नाम था उनका।
हाँ।
अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैम आप अगर देख रही हैं तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए।
इसमें कोई शक नहीं है,
बजे के बाद।
खूबसूरत आदमी है,
तो मेरे फैन है।
हाँ, दुनिया सारी
प्यार करते हैं। वो मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने, ना मैं कभी उन्हें लेट डाउन करूंगा।
अच्छा अच्छा,
और ना वो मुझे कभी लेट डाउन।
अच्छा अच्छा,
ये मोहब्बत है सुनने वालों का।
हाय हाय हाय, गलत है, कोई तेरे को रोकर नहीं आ सके। तो ऐसे घुमा घुमा के घुमा घुमा, तुम्हें सीधी बात नहीं करनी आती आमिर? सीधे क्यों नहीं तुम बात करते हो? जलेबी की तरह घुमा घुमा के क्यों करते हो भाई?
न्यूज पढ़ो, ये सीधी बात होती है।
बट ठीक है, फिर आज तेरे नाल इस तरह करके होनगी या बात, देखना नहीं है।
देखो, सीधी बात तो यही होगी ना। चलो न्यूज पढ़ो।
हाँ जी, बस चलो ठीक है। ओके जी, ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। बड़ी जबरदस्त किस्म की डेंटिस्ट्री की सर्विसेज देते हैं, और जो है आप भी अगर उनके पास जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उनके 3 क्लिनिक्स हैं, 2 हैं उनके मिसिसागा में, उसका नंबर है 9052325678, और 1 है जनाब स्कारब्रो में, उसका नंबर है 4167599999। एंड ऑन्टारियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे, विलेज टेज पे आप जाएं, इनके भी 2 रेस्टोरेंट्स हैं। और आप एक तो जो मिसिसागा में है, डिक्सी रोड पे है, 4141, और इसका नंबर है 9052323663। जो ओकविल में है वो है लोकेटेड एट 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल, और इसका नंबर है 9052262294। एंड जनाब राजा बाशा जी कहते हैं कि जी मेरे पास आओ, बिल्कुल सही कवरेज मैं आपको दूंगा घर की और गाड़ियों की। जो इंश्योरेंस है और आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा। ऑल स्टेट के साथ होते हैं, तो इनका नंबर है 6472903773। ठीक है जी, चलो जी हम आपको जो है बताते हैं, आप खबरें सुनाते हैं। सबसे पहले तो आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कनाडा के अंदर, मार्क गार्नियो, आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब की जो थी कैबिनेट उसमें बहुत अरसे तक मिनिस्टर रहे थे और फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, खासतौर पर बहुत बड़ी इनके पास पोस्ट थी, 75 years इनकी एज है। इनकी एक किताब आई है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है वो किताब आई है, उस किताब का नाम है मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड स्पेस पॉलिटिक्स एंड द प्रस्यूट ऑफ कैनेडा ड्रीम। ठीक है जी, तो ये इनकी जो आई है बुक आने वाली है, अभी आई नहीं है, ये इसके ऊपर जो है खुलासे ये कुछ कर रहे थे और वो कहते हैं जी कि इस बुक के अंदर यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में कुछ इन्होंने बातें की हैं। ये रिलीज होगी अक्टूबर में और इसको रिलीज करेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस वाले। इसमें उन्होंने कहा जी कि कनाडा की जो स्टैंडिंग थी ना, वर्ल्ड स्टैंडिंग दुनिया में, वो ट्रूडो साहब के अंडर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आई है, क्योंकि ये बिल्कुल इल प्रिपेयर्ड थे टू बी द लीडर और इनकी जो प्रायोरिटीज पॉलिटिक्स में थी वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और ये बिग अनाउंसमेंट्स तो कर देते थे और उनको फॉलो थ्रू नहीं करते थे। इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया कनाडा का इम्पैक्ट जो है बाहर, और ज्यादातर तो उन्होंने जाहिर है कि अपनी जो मेमोरीज हैं उनके बारे में लिखा है कि जिस वक्त ये मिलिट्री में थे और फिर एस्ट्रोनॉट बने थे और फिर उसके बाद जब फर्स्ट टाइम एमपी बने थे और इलेक्ट हुए थे 2008 में लिबरल एमपी फ्रॉम मॉन्ट्रियल वेस्ट मोंट विले मरी, और वहां से जो है फिर इनका पॉलिटिकल सफर शुरू हुआ था। तो पहले दो हिस्से जो हैं वो तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में है, तीसरा हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा इनका पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर है। इन्होंने बड़ा अनसक्सेसफुली लिबरल पार्टी की लीडरशिप के लिए भी रन किया था 2013 में, लेकिन बाद में इन्होंने विदड्रॉ कर लिया था और इन्होंने ट्रूडो साहब को बैक किया था। और वो कहते हैं जी कि इस बुक में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा कि जी हम सिर्फ लिबरल वैल्यूज दोनों हम दोनों फॉलो करते थे, लेकिन हम बिल्कुल क्लोज नहीं थे तो फिर ट्रूडो साहब ने दोनों मिनिस्टर किस तरह बनाया पाया। बहरहाल जी, और जो है वो कहते हैं जी कि ट्रूडो साहब के जो ट्रिप्स थे टू चाइना इन 2006 एंड 2017 और फिर इंडिया को जो ट्रिप था 2018 में, वो बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल थे, खासतौर पर जो दो चाइना के ट्रिप्स थे उसके अंदर तो ये फ्री ट्रेड टॉक्स जो है चाइना के साथ वो सिक्योर करने में नाकाम रहे। तो ये अब बड़ी मतलब है कि आई ओपनर टाइप की एक बुक आ रही है इनकी, तो और अब इसमें उन्होंने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि लग रहा है कि काफी एंटी ट्रूडो एंड एंटी लिबरल इनका स्टांस नजर आ रहा है, लेकिन अब जब बुक आएगी तो पता चलेगा कि और इसमें क्या है। सस्केचुअन का जो प्रोविंस है जी, उसने फाइल किया है एक इंजंक्शन फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीमियर स्कॉट मो, और वो कहते हैं जी कि ये इंतहाई अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो कार्बन टैक्स लेवी हमारे पे कंट्रोल करने की कोशिश लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑन इलेक्ट्रिक हीट इन अक्टूबर लास्ट ईयर जो इन्होंने अनाउंस किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 3 साल का एग्जेम्पशन दे रहा है ऑन होम हीटिंग ऑयल प्राइमरली इन अटलांटिक कैनेडा। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड अटॉर्नी जनरल जो है ब्रोवेन एयर, उन्होंने आज कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको हम बताना चाहते हैं कि सस्केचुअन के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम वही टैक्स एग्जेम्पशन देना चाहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं दूसरे कैनेडियंस को दे रहे हैं, और जो कैनेडियंस हैं उनको ये जो टैक्स रिलीफ मिला है जो दूसरे कैनेडियंस को, वो हम इनको भी देना चाहते हैं। सस्केचुअन के अंदर ये जो इंजंक्शन आया है वो ये कहता है जी कि ये आपका जो है सारे का सारा काम ये अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि आप जो है किसी भी प्रोविंस के बैंक अकाउंट से ये पैसे जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हम टैक्स रिलीफ देना चाहते हैं अपने जो है वो लोगों को। इन्होंने जो सेक्शन 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ रेफर किया है जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड अटॉर्नी जनरल है ब्रोमेन एयर। उन्होंने कहा जी कि हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेक्शन 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस के बैंक अकाउंट से बिल्कुल पैसे नहीं ले सकती है, तो इसलिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और हम सस्केचुअन के अंदर ये लेवी जो है वो कलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे बैंक अकाउंट पे ज्यादा ध्यान मत दें, मत यानी कि उससे पैसे आप निकालो। तकरीबन 9000 के करीब जो है एलसीबीओ उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी टॉक्स थी यूनियन के साथ, जो एलसीबीओ के साथ यूनियन की, वो सारी जो हैं वो ब्रेक डाउन कर गई हैं। एलसीबीओ और ऑन्टेरियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन जो है उनके बीच में बातचीत चल रही थी और यूनियन जो है उसने ब्लेम किया है प्रीमियर फोर्ड को। उन्होंने कहा जी कि डेडलाइन आज की थी 12:01 पे और कोलीन मैक्लियॉर्ड जो कि चेयर हैं यूनियन की, उन्होंने आज न्यूज से बात करते हुए यानी कि न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि जो फोर्ड साहब हैं वो अब ड्राई समर एक्सपीरियंस करेंगे। यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी हॉर्निक, उन्होंने भी कहा जी कि जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस बढ़ाने की जरूरत है और ये जो और ज्यादा हमको फुल टाइम जॉब्स चाहिए हैं और इसके अलावा कलेक्टिव जो एक अग्रीमेंट है वो आने की जरूरत है और एलसीबीओ के फ्यूचर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। इस वक्त 70% जो है एलसीबीओ की जॉब्स वो पार्ट टाइम है। तो वो कहते हैं जी कि उनसे जब पूछा गया कि जी आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप स्ट्राइक कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कहते हैं हाँ जी पैसा बहुत है साढ़े को, असी कंटिन्यू रखांगे। इनकी जो वेबसाइट एलसीबीओ की वो अब शो कर रही है कि ये आउट ऑफ बिजनेस है और इनके रिटेल लोकेशंस जो हैं वो सब बंद रहेंगे 2 वीक्स के लिए और जिस वक्त तक ये डील इनकी हो जाती है एलसीबीओ के साथ यूनियन की, तो वो कहते हैं कि अगर उससे पहले हो गई तो हम अपने सारे स्टोर्स खोल देंगे। तकरीबन 32 स्टोर्स हैं, नहीं बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन उसमें से जो 32 स्टोर्स हैं वो कहते हैं जी कि अगर स्ट्राइक चलती रही 2 हफ्ते के बाद भी तो हम वो खोलेंगे 3 दिनों के लिए हफ्ते के अंदर, फ्राइडे सैटरडे और संडे को फॉर लिमिटेड आवर्स। तो लड़ाई जरा लग रहा है कि थोड़ी सी गंभीर हो गई है। पील पुलिस जो है उसने जनाब आज 5 अरेस्ट किए हैं फॉर एक्सटॉर्शन केसेस और ये उनको बहुत दिनों से ये शिकायतें आ रही थी और ये सारे के सारे वाकयात December 2023 May 24 के बीच में हो रहे थे, जिसमें कि वो कहते थे कि ना सिर्फ ये इनको एक्सट्रॉशन के लिए बोलते थे बल्कि इनके ऊपर असॉल्ट करते थे और इनको थ्रेटन करते थे और एक केस में तो इन्होंने गोली वगैरह भी चलाई थी। जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो पील पुलिस की 21 डिवीजन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने की है। इसके मुताबिक जो लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर जो है दुपिंदर दीप चीमा जिसकी एज 36 है एंड ही इज फ्रॉम ब्रैम्पटन, बियंत टिल्लो इसकी एज जो है 51 इयर्स है ये भी ब्रैम्पटन से है, अरुणदीप ठिंड ये 39 इयर्स का है और मुस्तफा अलावी 32 इयर्स इसकी एज है, ये दोनों में से सागा से है। केमानी हसन कुर्नियस 32 इयर्स इसकी एज है और ये भी मिसेज सागा से है। ऑल टुगेदर ये सारे लोग जो है 14 ऑफेंसेस फेस कर रहे हैं। अपील पुलिस कहती है कि हमने अपनी ये जो टास्क फोर्स थी इनको सारों को पकड़ने के लिए दिसंबर के अंदर लॉन्च की थी और उसके बाद हमको पता चला था कि ये सब लोग जो है मोस्टली साउथ एशियन बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको ये टारगेट कर रहे थे, तो इसलिए फिर जो है इनको हम इनके पीछे थे और हम इनको जो थे पकड़ना चाहते थे और इनको जो है आज कामयाबी मिली है। स्टैट्स कनाडा की आज ये खबर आई है और इसके मुताबिक कैनेडियन इकोनॉमी जो है उसमें 1400 जॉब्स जो हैं वो लूज की हैं जून के महीने में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2 साल यानी कि सिंस जनवरी 2022 हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है एंड इट इज टचिंग नाउ 6.5%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो अब जो है वो मई के महीने से भी ऊपर है, मई के महीने में ये 6.2% था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अप्रैल में भी ऊपर गया था और 1.3 परसेंटेज पॉइंट से ये ऊपर गया था कंपेयर टू द लास्ट पीरियड और वो कहते हैं जी कि जो ये जॉबलेस हैं वो 27 वीक्स का डाटा ये जो हमने किया था जॉबलेस जो लोग थे वो 27 वीक्स से जॉबलेस थे जो कि शो करता है 4% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर यानी कि 2023 से। इकोनॉमी जो है उसने ऑल टुगेदर 3400 फुल टाइम जॉब्स जो थी वो लूज की थी और 1900 पार्ट टाइम जॉब्स जो थी लेकिन गेन की थी। जॉब्स जो थी ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग में गिरी थी 11700, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जॉब्स थी वो भी डाउन थी बाय 8800, अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज ने अलबत्त 17200 जॉब्स ऐड की थी, एग्रीकल्चर ने 12300 ऐड की थी और ये सारी चीजें जाहिर है कि इफेक्ट करेंगी बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो वो अनाउंस करने जा रहा है July 24 को, तो ये जो है जरा अच्छी खबर नहीं है। यूके के अंदर तो आपको हम कल से ही बता रहे थे और हमने जो प्रिडिक्शन आपको दी थी कि लेबर जीतेगी और लेबर ही जीती और बड़े मैसिव तरीके से लेबर जो है वहां पे जीती है और इनको मेजॉरिटी हाउस ऑफ कॉमन्स में लेने के लिए 326 सीट्स चाहिए होती हैं। लेबर पार्टी के जो हैं लीडर जो हैं केयर स्टार्मर जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, उन्होंने आज एक रैली से लंदन के अंदर खिताब किया अपनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, और उन्होंने कहा जी कि ये विक्ट्री जो है इट कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने जीती है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके मुताबिक 412 सीट्स एंड 650 सीट हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने 121, स्मॉलर पार्टीज जो हैं जैसे कि सेंट्रल लिबरल डेमोक्रेट्स उन्होंने 70 सीट जीती हैं। नाइजल फराज बड़ी जो कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है उनकी रिफॉर्म यूके ने 4 सीटें जीती हैं। यूके के जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब हैं उन्होंने आज अपनी जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर स्पीच दी, और उसके बाद उन्होंने जो है किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात की और फॉर्मली अपना रेजिग्नेशन उनको दिया। सुनक साहब ने कहा कि मैंने बहुत सारे मिस स्टेप्स लिए और मैं सुन सकता हूं लोगों का एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस की मैं लेता हूं। वो कहते हैं जी कि मुझे बड़ा अफसोस है कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर्स और कैंडिडेट्स और कैंपेनर्स थे उन्होंने बहुत दिन रात काम किया, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं उनको वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सका जो कि वो डिजर्व करते थे। उन्होंने स्टार्मर साहब को बेस्ट विशेस दी हैं और उन्होंने कहा कि हमारी कैंपेन के बीच में जो मर्जी डिफरेंसेस रहे लेकिन वो बड़ा ही डिसेंट पब्लिक स्पिरिटेड आदमी है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। इसके बाद जो है फिर स्टार्मर साहब जो हैं उनकी भी मुलाकातें प्रिंस चार्ल्स साहब के साथ हुई हैं बर्मिंगम पैलेस में, और सूत्रों के अनुसार उनकी बड़ा हंसी मजाक बल्कि हुआ प्रिंस चार्ल्स के साथ। प्रिंस चार्ल्स ने उनको कहा कि आप तो बड़े थक गए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इतना भी थका नहीं हूं, क्योंकि जाहिर है वो जो जीत की खुशी है वो तो है ही, तो लग रहा था कि जैसे बड़े कोई पुराने दोस्त हैं इस तरह से बड़े प्यार मोहब्बत में, क्योंकि आपको पता है कि किंग्स और क्वींस से बड़े लिए दिए लोग लेके जो है वो बात करते हैं, लेकिन प्रिंस चार्ल्स के साथ उनकी काफी हंसी मजाक रही। इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी जो हार हुई है वो सुनक साहब के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस जो है उन्होंने भी अपनी सीट जो है लूज की है। पाकिस्तान ने स्टार्मर साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस भेजे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम डिजायर करते हैं आपके साथ काम करने के लिए और ट्राइज में अपने और स्ट्रेंथन करेंगे। इस मौके पर ट्रंप साहब जो है, आप सोचें जरा, ट्रंप साहब ने किसको मुबारकबाद दी? ट्रंप साहब ने फराज साहब को मुबारकबाद दी और स्टार्मर को इग्नोर किया, उसको कोई नहीं दी। ये जो इलेक्शंस हुए हैं यूके के अंदर इसमें 15 पाकिस्तानी जो आजाद जम्मू और कश्मीर से हैं कश्मीरी ओरिजिन के एमपीज जो हैं वो भी जीते हैं आउट ऑफ 87 कैंडिडेट्स ऑफ एथनिक बैकग्राउंड्स, जिसके के अंदर श्रीलंकन हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, तो 15 उसमें से पाकिस्तानी भी हैं। और जो आज उन्होंने कुछ कैबिनेट की कुछ सीट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, और उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी सीट जो एक पाकिस्तानी जो आजाद कश्मीर से हैं कश्मीरी खातून उनको भी मिली है। इसके अलावा जो न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमी, उन्होंने तो आते सारी बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि हम इमीडिएटली इसराइल और हमास की जो वॉर है उसका एंड चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके बीच में हॉस्टेजेस जो है उनका रिलीज हो। तो यानी पहले दिन से ही जो है लग रहा है कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन जाहिर है कि स्टार्मर साहब ने कहा है कि जो चीजें अब बिगड़ गई हैं उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बीच में यूके की जो न्यूज है सबसे बड़ी वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो काफी चैलेंजेस हैं फिक्स करने के लिए। अच्छा, ये जिस वक्त अब ये सारा कुछ आप देखें कि ये विक्ट्री स्पीचेस और लोग जो है ये वो खुशियां मना रहे थे और ये सारा कुछ हो रहा था, उसमें लोगों की आमिर नजर किधर गई? उसमें लोगों की नजर गई ऋषि सुनक की बीवी के ड्रेस के ऊपर। ओ माय गुडनेस, ऋषि सुनक साहब जब अपना रेजिग्नेशन स्पीच दे रहे थे आउटसाइड 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो हर किसी की आंखें जो है उनकी बीवी जो पीछे खड़ी हुई थी अक्षाता मूर्ति उसके ड्रेस के ऊपर थी। ये बहुत बड़ा एक इंडियन लेबल है, उसका ये हाई नेक ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था जो कि कोई 42,000 इंडियन रूपीज का है, और इसके ऊपर ब्रिटेन का जो ब्लू और रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स हैं वो नजर आ रही हैं जो उनके फ्लैग में नजर आती हैं। लेकिन लोगों ने ऑनलाइन आज बहुत ज्यादा जोक किया, इन्होंने कहा इतने अमीर आदमी की बेटी, इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी और इसकी जो मदर है राज्यसभा की एमपी है सुधा मूर्ति, और ड्रेस देखो जो उसने पहना हुआ है, लग रहा है कि एरोज हैं, एरोज नीचे की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, जिसका कि मतलब है कि मेरा मियां हार गया है, और ड्रेस के नीचे जो रेड रंग है उसका मतलब है द पार्टी इज ब्लीडिंग। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरे किसी ने दिल जलाने कहा, उसने कहा नहीं नहीं ये तो इसने जो ड्रेस पहना है ना ये अमेरिकन फ्लैग का कलर है ब्लू रेड एंड व्हाइट, इसका मतलब है कि शी इज ट्राइंग टू से कि माय गाय हैज लॉस्ट हियर, ही हैज रिजाइन टू द किंग एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हॉप टू ऑन आवर प्राइवेट जेट टू यूएस, तो अब हम नई लाइफ अपनी यूएस में शुरू करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक और दिल जले ने कहा जी कि जब हम ऋषि सुनक साहब की फेयरवेल स्पीच सुन रहे थे डाउनिंग स्ट्रीट पे, तो उनकी बेगम जो है मुझे रिमाइंड कर रही थी एज इफ शी इज अ स्केलेटन, ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि स्केलेटन लग रही थी। फिर उन्होंने एक और दिल जले ने कहा कि सुनक साहब की बीवी का इवन ड्रेस बता रहा है कि एवरीथिंग वॉज गोइंग डाउन फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। तो बहुत ही विशियस किस्म का जो था जनाब, आज उस बेचारी अक्षता को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा झेलना पड़ा उनके ड्रेस की वजह से। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया जो है उसने जनाब आज ये, दिस इज अ बिग ब्रेकिंग न्यूज, और सऊदी अरेबिया ने आज रॉयल डिग्री जो है उसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा जी कि हम सऊदी सिटीजनशिप आपको दे सकते हैं, लेकिन किस सूरत में, अगर आप दुनिया का टॉप टैलेंट हैं, यानी कि बहुत बड़े एथलीट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, रिसर्चर हैं, या कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो आपको सऊदी अरेबिया का पासपोर्ट जो है वो दिया जा सकता है, यानी सऊदी नेशनलिटी जो है वो दी जा सकती है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ये जो मोहम्मद बिन सलमान है एमबीएस का जो विजन 2030 है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। उसके अंदर वो कहते हैं जी कि वी वांट टू फॉस्टर इनोवेशन डेवलपमेंट, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि एक लिमिटेड रॉयल डिक्री जो थी वो आई थी 2021 में, तो उसी को अब ये हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और जो दुनिया का बेस्ट टैलेंट है उसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली जो अमेरिकन मॉडल है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी खबर जिसने बहुत दुनिया में तहलका मचाया, खास तौर पे यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो थी हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं विक्टर ऑर्बन, जिनकी की आज मुलाकात जो है पुटिन साहब से हुई है। आपको बताइए कि अभी ही जो है हंगरी को एक रोटेटिंग चेयरमैनशिप मिली है यूरोपियन यूनियन की, और अब जो है ये पहले तो गए हुए थे कीव में, और इनकी मुलाकातें जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से हुई थी यूक्रेन के अंदर, और उसके फौरन बाद ही ये जो हैं मॉस्को में आ गए हैं। और इस इधर बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंटली इन्होंने, ऑर्बन साहब ने कहा कि हम तो पीस प्रपोजल्स यहां पे लेकर आए, और हम चाहते हैं निगोसिएशंस को आगे बढ़ाया जाए ताकि इस वॉर को जो है रोका जाए। पुटिन साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आप रशिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो बड़े उसने आज गुस्से की नजर से इनको देखा, क्योंकि उनकी सहमति इनको हासिल नहीं थी। ही जस्ट टुक द इनिशिएटिव ऑन हिज ओन और यहां पे आ गए। ऑर्बन साहब ने कहा हम इस कॉन्फ्लिक्ट को चाहते हैं कि ये रुके, और इसके अंदर हम आपके बीच में डायलॉग रिस्टोर करना चाहते हैं, और ये जो हॉस्टेजेस हैं इनका एक्सचेंज चाहते हैं। तो आज उस सिलसिले में इन दोनों लीडर्स की मुलाकातें हुई। नतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने अब कहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट जो है उसके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमास ने एक नया प्रपोजल भेजा है वॉर को रोकने का और हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने का। तो वो कहते हैं जी कि हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इनके बीच में मीडिएशन जो है कॉन्स्टेंटली करवा रहे हैं कतारी, इजिप्शियन और जो है यूएस जो मीडिएटर्स हैं वो हैं। तो इस सिलसिले में जो इनके इसराइल के जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बर्निया, वो अब कतर में आए हुए हैं, और वो जो हैं बर्निया साहब की मुलाकातें जो हैं वो होंगी कतारी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ और दूसरे जो कतारी लीडरशिप है उनके साथ, ताकि ये जो गाजा की डील है उसके ऊपर बात की जा सके। बाइडन साहब ने आज टेलीफोन पे बात करके नतन्याहू साहब को इसकी बड़ी मुबारक दी। उन्होंने कहा वेरी गुड, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, यूएस बिलीव करता है कि इसराइल और हमास जो है उनके बीच में काफी अब ओपनिंग आ रही है, और शायद सीज फायर डील की तरफ ये जा सकते हैं और हॉस्टेजेस भी रिलीज कर सकते हैं। एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी जो मीडिया से बात की है, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये प्रोसेस आगे चल तो रहा है, लेकिन ये मत समझे कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में इनके बीच में जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमास जो है उसने डिमांड की है कि कंप्लीटली एंड करें वॉर को, और ये जो हैं सेटलमेंट्स इनको हटाया जाए, और इसराइल कंप्लीटली विदड्रॉ करे अगर उसको हॉस्टेज डील चाहिए और वॉर रोकनी चाहिए। इसराइल कहता है कि हमको वॉर उसी वक्त हम रोकना चाहते हैं जिस वक्त आप हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे और कंप्लीटली हमास का जो मिलिट्री और गवर्नमेंट कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब कतर, इजिप्ट और यूएस जो है कॉन्स्टेंटली मीडिएट कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आप आ जाएं। बहरहाल अब मोसाद के ये जो चीफ हैं डेविड बर्निया, ये अब क्या प्रपोजल नया लेके कतर में आए हैं, इसकी सारी डिटेल्स जब आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि अब बातचीत कहां पे खड़ी हुई है। इटली के अंदर जनाब आज बहुत ही खतरनाक किस्म के सीन देखे गए। इनका जो माउंट एटना और स्ट्रॉम्बली का जो है वो उसके अंदर से वॉल्केनो फट फट के सारा बाहर की तरफ आ रहा है और वो जो लावा है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर यानी एरिया के अंदर फैलता चला जा रहा है, खासतौर पे सिसली के एरिया में। उसकी वजह से ये बहुत ही इनका एक जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कटानिया का, उसको शट डाउन कर दिया गया है। एटना जो है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज और अभी रिसेंट डेज में वो काफी इंटेंस रहा है, यानी कि काफी उससे जो है वो वॉल्केनो फटता रहा है। और स्ट्रॉम्बली जो है वो नॉर्थ ऑफ सिसिलियन कोस्ट, वहां से भी बहुत ज्यादा लावा निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लावा सारा निकल निकल के सी के अंदर जा रहा है। तो ऐसे है, सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने रेड अलर्ट इस एरिया के लिए जारी किया है और उसने कहा जी कि सिचुएशन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब हो सकती है अगर ये ज्यादा वॉल्केनोज जो है दोनों फटे। फायर ब्रिगेड जो है उसने एज अ साइन ऑफ प्रिकॉशन बहुत सारे फायर फाइटर्स को इलाके में ला के रखा हुआ है कि कहीं जो है वो अगर ज्यादा तबाही आई तो हम उसको निपटने के उसमें होने चाहिए, यानी पोजीशन में होने चाहिए। मलेशिया के अंदर भी आज बहुत ही अजीब किस्म के वाकयात हुए। मलेशिया का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे गैस लीक हुई जिसकी की वजह से 39 लोग जो हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये जो लीक हुई थी ये केमिकल लीक था इनका इंजीनियरिंग एरिया में, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं था पैसेंजर टर्मिनल के साथ, लेकिन फिर भी 39 लोग जो है उनको डिजीनेस और नौजिया हुआ। लोकल रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद नूर खैरी समसुद्दीन जो है समसुमीन साहब जो है उन्होंने आज इसकी इतला दी है। 14 जो पेशेंट्स हैं उनको एयर डिजास्टर यूनिट के अंदर थे उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, उसमें से जो फिर एक आदमी है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसका इफेक्ट पैसेंजर्स के ऊपर और फ्लाइट्स के ऊपर कुछ नहीं हुआ है और इसमें पब्लिक सेफ्टी भी कुछ नहीं है। ये गैस जो लीक की है ये इसलिए हुई है क्योंकि 9 साल से ये जो स्किड टैंक था इसको साफ करके इसकी अपग्रेड्स नहीं की गई थी और ये गैस जो है ये मिथाइल मरकैप्टन है और वो कहते हैं जी इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं और इसको पेट्रोलियम गैस के साथ मिक्स करते हैं ताकि इसकी स्मेल आए और पता चले कि लीकेज कहां पे है। इसकी स्मेल जो होती है रॉटन कैबेज जैसी होती है और एकदम से डिटेक्ट की जा सकती है, एज अ रिजल्ट डिटेक्ट कर दी गई है और अब उसको जो है फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। यहां पे जी 1400 लोगों की कैपेसिटी है। तो ये है, दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्रू रोड मिसिसागा पे। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823। इसके अलावा जनाब रॉयल पायल ज्वेलर्स जो है इनकी ग्रैंड ओपनिंग के बाद अब ये बड़े जबरदस्त किस्म के जो ज्वेलरी के सेट्स हैं आपको फ्रॉम दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और अब वो कहते हैं जी तुर्की से भी हम ले आए हैं तो आप वो बेच रहे हैं यहां पे। दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन। और अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। और सुल्तान भाई होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे। तो अगर आपको सस्ते यानी कि मार्केट से सस्ते रेट पे चाहिए तो 801 वो वे ड्राइव वेस्ट पे आप जा सकते हैं। इनका नंबर है 9054502828 इनका नंबर है, आप इनको कॉल कर लें सुल्तान भाई को। अच्छा जी, पीटीआई जो है उसने कहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी जो करा रहे हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। इस चीज का खुलासा जो है इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स के साथ किया आउटसाइड ऑफ अडियाला जेल जिस वक्त वो अपना एक केस सुनने के लिए जा रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है हमारी रिजर्वेशन तो हैं, ये जो गवर्नमेंट ने अपना नया एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन अजम इस्तेकाम शुरू किया है उसके लिए, क्योंकि इससे इनस्टेबिलिटी और मुल्क के अंदर आएगी, लेकिन चूंकि मुल्क में टेररिज्म बढ़ रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक काउंटर टेररिज्म ड्राइव किया था और उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये सारा कुछ इंटेल बेस्ड होगा। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं एक एपीसी ऑर्गेनाइज करूंगा और तमाम पोलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करूंगा कि इस ऑपरेशन को आगे कैसे लेके जाया जाए। अभी तक इसकी जो है एपीसी की डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जब भी ये एपीसी कराएंगे हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारण ने इसके ऊपर बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में कहा है कि हम इमरान खान साहब के इस जेस्चर को वेलकम करते हैं। मर्दान के एरिया में पाकिस्तान में आज एक धमाका हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की डेथ हुई है और 7 लोग जो है बहुत ही गंभीर अंदाज से जो है वो जख्मी हो गए हैं। और रेस्क्यू टीम्स और पुलिस की सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे साइट पे पहुंची थी और उन्होंने जो इंजर्ड है उनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। डिटेल्स के मुताबिक 11 लोग जो थे वो इंजर्ड थे, उनमें उनको हॉस्पिटल जब रश किया तो उसमें से 3 की जख्मों की बहुत ज्यादा जख्मी थे तो उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मरदान के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है जहूर बाबर अफरीदी, उन्होंने कहा जी कि 2 पुलिस वाले जो थे वो भी उस वैन में जिसको निशाना बनाया गया था उसमें ट्रेवल कर रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा इंजर हुए। एक्सप्लोजिव जो थे वो रोड साइड पे प्लांट किए गए थे और जिस वक्त वैन ये पुलिस वाली गुजरी है वहां से तो उसने उसको ब्लो करने की कोशिश की तो उसकी वजह से ये सारे कुछ जो हादसा है वो हुआ है। उसके पास एक रिक्शा भी खड़ा हुआ था, वो रिक्शा भी ब्लास्ट हो गया और रिक्शा के अंदर एक जो पैसेंजर बैठा हुआ था उसकी भी डेथ हो गई है। तो एरिया के अंदर इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और उस एरिया सारे को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पता नहीं इन्हें इंटेलिजेंस कितने वे कितने सो रही है की हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है जी आज ATC उन्होंने आज रिवोक किया है अरेस्ट वारंट्स जो कि उन्होंने इशू किए थे KP के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के केस में रिलेटेड टू वायलेंट प्रोटेस्ट एंड वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। गंडापुर साहब जो थे आज कोर्ट के अंदर हाजिर हो गए थे और इसी वजह से और वो चाहते थे कि उनके ये अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो किए जाएं सस्पेंड किए जाएं। उन्होंने आज कोर्ट में आके सरेंडर किया और उन्होंने कहा जी कि मैं सॉरी करता हूं कि मैं पहली हियरिंग्स में नहीं आ सकता था बिकॉज ऑफ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स। जुलाई 2 को कोर्ट ने कहा था कि इनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स डाले जाएंगे इनके और दूसरे PTI के ऑफिशियल्स के खिलाफ क्योंकि और इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाएगा अगर ये कोर्ट की हाजिरी नहीं लेंगे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने कहा था कि मैं जो है ये वारंट्स जारी कर रहा हूं लेकिन अगर ये नेक्स्ट हियरिंग पे आ गए तो मैं रिव्यू करूंगा और मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि मैं इनको रिवोक करूं। तो आज वही हुआ कि जिस वक्त गंडापुर साहब आ गए कोर्ट में तो फिर जज साहब ने ये वारंट्स जो है विदड्रॉ किए। तो अब जो है ये जो बातचीत है ये अब कहां जाएगी वो हम डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मंडे को बताएंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की ये जो रिक्वेस्ट थी कि सोशल मीडिया जो है उसको 6 दिन के लिए मुहर्रम 6 to 11 को सस्पेंड किया जाए उसको टर्न डाउन किया। उन्होंने कहा हम ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो है उनको क्लोज नहीं किया जाएगा लेकिन हम ये पूरी कोशिश करेंगे जो सिक्योरिटी रहेगी वो फुल प्रूफ रहेगी इस होली मंथ के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी बिल्कुल फुल अलर्ट और एक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करेगी लेकिन मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो शायद जहां जहां से प्रोसेशन ये गुजरेगा मुहर्रम का वहां पे शायद ब्लॉक किए जाएंगे और जहां पे मजलिसें होंगी वहां पे भी ये ब्लॉक किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ड्यूरिंग दीज मंथ्स जो होते हैं इस तरह के होली मंथ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेट मटीरियल किया जाता है और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो जो है इसके लिए आप इसको बंद करें। बालाजी वो बंद नहीं किया गया। और दूसरी हमने आपको कल खबर सुनाई थी कि PTI ने कहा था कि हम इस्लामाबाद में 6 को यानी कि कल एक रैली करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस्लामाबाद की उसने इसको सस्पेंड किया है। PTI ने कहा है कि हम इस सस्पेंशन के खिलाफ जो है जाएंगे और ये करना चाहते थे तरनौल चौक के ऊपर अपना धरना तो लेकिन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा कि नहीं मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है तो हम इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब काफी गर्मा गर्मी है बहुत अरसे के बाद देखी जा रही है बिकॉज द ऑपोजिशन इज बैक आफ्टर 10 ईयर्स तो अब वो अपना थोड़ा दिखा रही है कि हाँ भाई ऑपोजिशन भी अब है तो अब कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं। अब जो राष्ट्रीय जनता दल जो है RJD उनके जो हेड हैं लालू प्रसाद यादव उन्होंने जनाब BJP के खिलाफ जो है वो बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की हुकूमत तो बस एक महीने और में क्लैप्स कर जाएगी यानी कि सिर्फ अगस्त के महीने तक शायद चलेगी उसके बाद क्लैप्स कर जाएगी। अब BJP जो है उसको बड़ा गुस्सा इस बात पे है वो कहते हैं जी आप हेलुसिनेशन आपको हो रहे हैं और ये आपकी ख्वाहिश जो है वो दिल में ही रह जाएगी और आप इसको आगे लेके नहीं जा सकेंगे। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जो है उन्होंने कहा जी कि लालू साहब जो है डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और मोदी जी जो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे सिर्फ मोदी जी लेके जा सकते हैं और बिहार के अंदर खासतौर पर मोदी जी और नीतीश कुमार जो है उनकी रणनीतियां जो है वो चलेंगी आपकी नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है जो मर्जी बीजेपी के बीजेपी एक्चुअली रैटल्ड है ये जो बड़ी अब जो है वो अब ऑपोजिशन जो है बड़ी बहादुर होकर सामने आई जो है। शशि थरूर साहब जो है सीनियर कांग्रेस के मेंबर वो कहते हैं जी कि ऑपोजिशन जो है वो अब अपना स्ट्रेंथ दिखा रही है और ये बहुत सारे इश्यूज में अब बीजेपी को पुश कर रही है और बहुत सारी बातों के ऊपर अब जो है वो बात की जाएगी। और ये जो पहले ऐसे होता था कि स्टैंडिंग कमेटी से कंसल्टेशन के बगैर सारी चीजें पास कर दी जाती थी, अब इस तरह से नहीं होएगा। अब इस तरह से जितने भी बिल आएंगे उनके ऊपर बहस की जाएगी और फिर इनको आगे अगर अपोजिशन उसको सहमति देगी तो आगे उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और वो कहते हैं जी कि अब बीजेपी को जो अपोजिशन है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है। तो जनाब ये है चक्कर, ठीक है जी। आज एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक बिटवीन 2008 एंड 2019 हिंदुस्तान के 10 बड़े सिटीज में एयर पोल्यूशन की वजह से 33,000 लोगों की डेथ हुई है। ये रिपोर्ट जो है द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ वाले जो हैं वो जो जर्नल है उनका वो सामने लेकर आए हैं और वो कहते हैं जी कि इन सिटीज में तो इंडियन एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये जो 10 सिटीज जिनकी ये वो बात कर रहे हैं उसके अंदर है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और रोहतक जो है वो है। रोहतक जो है वो तो हरियाणा का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी जो है जून के महीने में जो था वो था अकॉर्डिंग टू दिल्ली बेस्ड सेंटर बाय रिसर्च फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। और वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के जो 250 सिटीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रोहतक है। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट 8.1 मिलियन लोगों की दुनिया में 2021 में एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ्स हुई हैं। तो ये जनाब बड़ी ही खतरे में नाक चीज है पोल्यूशन जो है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो क्लीन क्लाइमेट जो है उसकी तरफ ग्रीन क्लाइमेट की तरफ जाने की जरूरत है। अच्छा जनाब, आज विवेक ओब्रॉय साहब ने जो है फिर से पुराने कटे खोल दिए हैं और जो उनकी लड़ाई थी सल्लू भाई के साथ, अब सल्लू भाई के साथ तो लड़ाई करके आप बॉलीवुड में तो जिंदा नहीं रह सकते आपको पता ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा डेयरिंग काम किया, सल्लू भाई से लड़ाई की। तो विवेक ओब्रॉय साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरा जो लड़ाई था ये सलमान खान के साथ उसने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और जो कुछ नाम तो नहीं उन्होंने लिए लेकिन उन्होंने कहा जी कि बॉलीवुड के कुछ बहुत ज्यादा जो पावरफुल लोग थे दे मेड श्योर कि मुझे बॉलीवुड में बिल्कुल काम ना दिया जाए, हालांकि मैंने मुझे बेइंतहा सक्सेस मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले लेकिन वो फिर जल्दी गायब हो गए। इस सारे पीरियड के अंदर मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मैं पेन में था, एंगर में था और मैं विक्टिम अपने आप को महसूस करता था और मैं कह रहा था कि मैं किस तरह इसमें डील करूंगा। फिर मेरी मां जो है मेरे सामने आई, मेरा हीरो बन के आई और उसने मुझे कहा कि तुम अपनी अटेंशन उन लोगों पे डालो जो तुम्हें हीरो समझते हैं, जब तुम उन लोगों के साथ काम करोगे तो तुम खुद भी हीरो और विनर फील करोगे और वो लोग भी तुम्हारी कदर कर सकेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2003 में विवेक ओब्रॉय ने कहा था कि जी सलमान खान मुझे थ्रेटन कर रहा है बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद ऐश्वर्या रॉय, क्योंकि ऐश्वर्या रॉय की उस वक्त जो है बड़ा मैसी ब्रेकअप हुआ था सलमान खान के साथ। उसके बाद ऐश्वर्या रॉय ने ना इसकी ना सलमान की किसी की भी परवाह किए बगैर अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी अप्रैल 2007 में और विवेक ओब्रॉय ने शादी कर ली थी प्रिया एल्वा के साथ। अब इस वक्त ऐश्वर्या की बेटी है और विवेक का बेटा है। विवेक कहता है जी कि बहुत सारे अवार्ड विनिंग कमर्शियली सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेज जैसे कि शूट आउट एट लोखंड वाला देने के बावजूद भी मैं 14 महीने घर में बैठा हुआ था और कोई मुझे घर काम देने को तैयार नहीं था, बट आई हैव कम स्ट्रांग फ्रॉम दीज शेडोज एंड नो डाउट अबाउट इट। अगर आपने कुछ देखी है इनकी जो कुछ अरसा पहले डेढ़ दो साल पहले जो इनकी चीजें तीन साल पहले आई हैं जैसे कि इनसाइड एज एंड धारवी बैंक, अगर आप देखें क्या जबरदस्त सेटिंग की है फिर से उसमें विवेक ओब्रॉय ने, तो आप जरूर देखें वो। अच्छा जनाब, जूही चावला साहिबा जो हैं जो कि केकेआर में कोलकाता नाइट राइडर्स में शाहरुख खान के साथ को ओनर भी हैं अपने हस्बैंड जय मेहता के साथ, उन्होंने आज कुछ अपने जो अर्ली डेज थे जिस वक्त ये फॉर्म कर रहे थे फर्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल में अपनी टीम और उसके सिलसिले में बातचीत कर रहे थे उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि उस मौके पे ललित मोदी जो हैं वो हमारे जो कि ये सारा आईपीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इंडिया में, वो कहते हैं जी वो मेरे और शाहरुख खान के पास आए थे और वो कह रहे थे कि अगर आईपीएल के अंदर क्रिकेट की के टीम ओनर्स जो हैं आप जैसे ग्लैमरस लोग होंगे तो आईपीएल के अंदर ज्यादा जो है वो लोगों का अट्रैक्शन आएगा। तो वो कहते हैं जी कि शाहरुख खान को और मेरे मियां को जय को बड़ी अच्छी ये बातें लगी और इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। शाहरुख खान जो होता था दिन में बहुत ज्यादा बिजी होता था, उसके पास बेशुमार काम थे, उसके जो स्केड्यूल्स थे वो बहुत बिजी थे, तो ये जो मीटिंग्स होती थी आईपीएल के सिलसिले में ये 10 बजे रात को स्केड्यूल की जाती थी, लेकिन 11 बजे से पहले तो वो शुरू ही नहीं होती थी। 11 बजे भी जब शुरू होती थी तो हर कोई बातचीत करता था, बाय द टाइम ये सारी बातें जीते और सब खत्म होती थी तो मीटिंग 12 या 12:30 पे जो है ये एएम पे शुरू होती थी। उस वक्त तक तो मुझे नींद आ रही होती थी, तो मैंने 2-3 मीटिंग्स तो अटेंड की। उसके बाद मैंने शाहरुख को और जय को कहा कि भाई तुम दोनों मीटिंग्स करो, मैं तो जा रही हूं सोने मैं तो ये मीटिंग्स नहीं अटेंड करूंगी। तो बहरहाल जी ऐसे। और जनाब जुनेद खान साहब, अब आप सोच रहे हैं कौन से जुनेद खान? हाँ जी, जुनेद खान, आमिर खान, मशहूर बाप आमिर खान के बेटे जो हैं, वो अभी रिसेंटली एक फिल्म में आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा की महाराज जो थी, उससे इन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपना डेब्यू किया है। वो कहते हैं जी कि मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स जो हैं मेरे वालिद साहब आमिर और मेरी बहन इरा हैं। वो कहते हैं वैसे तो हम जनरली फिल्म्स के बारे में बात नहीं करते हैं और इरा जो है उसका बड़ा अनकंडीशनल सपोर्ट है, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं कि मेरी ऐसी सपोर्टिव फैमिली है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करने से डरते नहीं है। मेरे पापा जो है वो मुझे कहते हैं, यानी कि आमिर खान मुझे कहते हैं, देखो भाई मेरा इस बात के बारे में ये नजरिया है और अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। और मेरी बहन जो है वो भी मुझे काफी जो है वो बताती है कि नहीं तुम्हारा ये अच्छा था और ये अच्छा नहीं था, और कहते हैं मेरी माँ भी ऐसा ही करती है, लेकिन ये सारे लोग जो हैं जो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो मुझे एनकरेज करता है काम करने के लिए, तो मैं ब्लेस्ड फील करता हूं कि मैं इस फैमिली से हूं। ठीक है जी, हाँ जी, जाहिर है शाहरुख का पुत्र, आमिर का पुत्र हैं जी, अक्षय का पुत्र, ये जो है वड्या वड्या दे पुत्र जड़े ने, उन्होंने ऐश नहीं करनी तो फिर तू और मैं करनी है आमिर है, तो फिर चुप करके बैठो तुम, बिल्कुल खामोश, तुम्हारी बिल्कुल आवाज ना पूछे ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो बड़े जेवलिन जो है मास्टर हैं अरशद नदीम साहब, 27 इयर्स उनकी एज है, वो अब जो है अपना डेब्यू करने जा रहे हैं 2024 एथलेटिक्स सीजन जो कि विद पेरिस डायमंड लीग के साथ, और इनके इनके जो कोच है सलमान बट, उनके साथ ये आज पेरिस जो है वो पहुंच गए हैं और वहां पे जो ये एलीट वन डे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हो रहा है 7 जुलाई को, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने विड्रॉ किया था पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड में लास्ट मंथ, क्योंकि इनको काव मजल इंजरी हो गई थी और अब वो कह रहे हैं जी कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं मेरे ट्रेनिंग और फिटनेस के लिए। इनका जो बेस्ट थ्रो इन्होंने जेवलिन में किया है वो है 90.18 मीटर्स, जो के बेस्ट रिकॉर्ड है इन साउथ एशिया। तो हम दुआ करते हैं कि भाई पेरिस में भी आप अच्छा करें। ऑस्ट्रेलियन कोच जो है शैनन यंग, उन्होंने जनाब आज बाबर आजम की बहुत ज्यादा तारीफ की है, उन्होंने कहा कि ही इज अ 29 ईयर ओल्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और आजकल यंग जो है वो विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया है, हम जो अपनी टीम होती है अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो होते हैं उनको हम बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पैशन जो है वो ओवर राइड करता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से बहुत ज्यादा होती हैं। पाकिस्तान में जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड यहां पे हैं और आजम जो है वो उनमें से बहुत अच्छा है, एंड ही इज डूइंग जस्ट फाइन, ही इज अ ग्रेट गाय, और वो एक एकेडमी जो यंग लड़की और लड़कियों को जो सिखा रहा है गेम वो दैट इज फैंटास्टिक और बड़ा एडमरेबल है। वो कहते हैं जी कि अब आने वाले दिनों में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं हाई परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन और यंगर क्रिकेटर्स जो हैं उनको लेके पाकिस्तान का टूर करूं नेक्स्ट ईयर, और मैं चाहता हूं कि वो आके पाकिस्तान में खेलें और पाकिस्तान के बच्चे उनसे और वो पाकिस्तानी बच्चों से जो है कुछ सीखें। पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग सीजन है जी वो बेतहाशा बिजी रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 3 टेस्ट सीरीज, 1 ओडीआई ट्राई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इस सब की डिटेल्स जो है पीसीबी ने आज अनाउंस की है फॉर 2024-25 सीजन। उसने कहा जी कि पाकिस्तान होस्ट करेगा 12 टीम्स को इन 8 मंथ्स और आईसीसी का इवेंट भी कराएगा। पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेट करेगा इन द फर्स्ट ओडीआई ट्राई सीरीज इन 21 ईयर्स बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। बांग्लादेश के साथ ये खेलेगा 2 टेस्ट इन रावलपिंडी फ्रॉम August 21st to 25, कराची के अंदर खेलेगा August 30 से September 3 तक। फिर ये होस्ट करेगा इंग्लैंड को फॉर 3 टेस्ट इन मुल्तान फ्रॉम October 7 to 11 एंड इन कराची October 15 to 19, इन रावलपिंडी October 24 to 28। उसके बाद होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज को फॉर 2 टेस्ट इन कराची January 16 to 20, मुल्तान January 24 to 28। उसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है उनके साथ एक ओडीआई ट्राई सीरीज जो है मुल्तान में शुरू होगी और खेली जाएगी बिटवीन February 8 to 14। फिर पाकिस्तान टूर करेगा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का फ्रॉम November 4 to January 7। और वहां पे ये खेलेंगे दो टेस्ट, 9 ODIs, 3 T20s. फ्रॉम अगस्त 2024 टू मार्च 2025 पाकिस्तान खेलेगा 9 टेस्ट, 9 T20s, 14 ODIs. 9 टेस्ट अगेन बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जो है, दे विल बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25. तो काफी बिजी सीजन है. इतना खेलने के बाद भी अगर इनको क्रिकेट नहीं आई तो फिर तो पता नहीं कब आएगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है जी कि हम बड़े एक्साइटेड हैं जो हम इंडियन फैंस को वेलकम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने वाली है उसमें 6 टाइम्स इंक्रीज आया है टिकट सेल्स में, विच इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन है. वो कहते हैं जी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो 10 फोल्ड इंक्रीज उसने टिकट सेल में देखा है और हम बड़े थ्रिल्ड हैं उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करके आ रहे हैं. इसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडियन फैन जोन भी बनाई है फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्रिएट अ वेलकमिंग एटमोसफेयर फॉर इंडियन क्रिकेटिंग फैंस. तो वो कह रहे हैं जी कि ये बहुत ही जबरदस्त जो है मैचेस रहेंगे और हम बड़े इसमें खुश हैं. यूरो 2024 के जो मैचेस हो रहे हैं जी, ये इसके अंदर आज दो मुकाबले थे. एक तो था स्पेन और जर्मनी का. पहले तो 0-0 से फुल टाइम तक ये बिल्कुल जो है बराबर चल रहे थे. उसके बाद पेनल्टी किक्स आई, उसमें स्पेन जो है उसने डिफीट किया जर्मनी को 2-0 से. इसके साथ साथ पोर्चुगल और फ्रांस का भी कुछ ऐसा ही मुकाबला था, 0-0 से ये फुल टाइम तक थे. उसके बाद जो है पेनल्टी किक्स पे पोर्चुगल ने जो है बनाए 3 और फ्रांस ने बनाए 5 गोल और उसकी वजह से फ्रांस जीता. तो जनाब ये हैं हमारी आज की सारी खबरें.
बस हो गई खबरें.
अच्छा और सुनी है तू?
नहीं नहीं मैं आप कर लें, शौक है आपको ना.
अच्छा तुम्हें नहीं है?
नहीं, नहीं,
तुम जो इधर बैठ के कड़ियां कर रहे थे.
सुन रहे थे हम तो.
अच्छा तुम सुन रहे थे? ओहो हो. अच्छा 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 अच्छा.
कुछ भी नहीं बोलते.
हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल बहुत ही मासूम हो आमिर. हाँ सारा कुछ बोलती तो मैं रहती हूँ, तुम तो बोलते ही नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे.
इस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए. ठीक है.
हाँ ठीक है
जनाब, ये गर्मा गर्म खबरें थी. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर 4166201778. और ऐसा करते हैं, खबरें हो गई गर्मा गर्म, अभी टॉप ऑफ दी आवर में ब्रेक टाइम है थोड़ा.
हाँ.
तो मैं एक सुरीला सा गाना आप लोगों को सुनाता हूँ, थोड़ा सा आपका मूड बन जाएगा. आज वैसे ही वीकेंड.
हाँ.
स्टार्ट हो गया.
हाँ. TGIF.
ये क्या?
थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.
ओ माय गॉड.
TGIF.
लेकिन जी ये जो शॉर्ट राइटिंग लैंग्वेज है ना.
हाँ.
उस दिन कहते टीके कुछ पता नहीं क्या हुआ, नहीं टेक केयर का भी. हाँ. बनाया था
PTC. हाँ. तो मैंने कहा भाई ये PTC क्या है? ये PTC तो पाकिस्तान का वो है ना, वो
टेलीकम्युनिकेशन
की कंपनी है. ये PTC क्या है? तो कहता है मेरा बेटा, कहता है PTC का मतलब प्लीज टेक केयर.
ओ माय गॉड, आजकल के बच्चों को जो है. हाँ. आप नहीं समझा.
नहीं नहीं नहीं
कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, टेंशन ना ले.
हाँ.
और
TGIF
आप कर लें TGIF. और बिल्कुल जनाब, आप भी हमारे साथ जुड़ लीजिएगा. 4
TGIF कर सकते हैं
आप भी, TGIF कर सकते हैं. आपका वीकेंड अच्छा गुजरे. आज फ्राइडे, थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, थोड़ा गाना सुनेंगे, म्यूजिक को कुछ हिस्ट्री शादी जी के पास भी होती है. कोई ऐसा गाना ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, लेकिन वो चल भी सके ऐसा गाना हो. और वो फंस जाते हैं ना कभी कभी गाने, वो पुराने गाने होते हैं फंस जाते हैं.
हाँ.
वो चल नहीं पाते. तो हम कोशिश करेंगे कि वो गाने लगाएं जो कि सीधे चल जाएं, फंसे नहीं किसी किसी बोर्ड में जाके नहीं फंस जाएं. तो कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ा. अगर आपकी भी कोई फरमाइश है.
हाँ.
तो आप हमें बता सकते हैं 4166201778. इसके अलावा आप हमें फोन पर सुन सकते हैं 6478724900 पर आप हमें सुन सकते हैं क्रिस्टल क्लियर. वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बहुत क्लियर है 770. लेकिन अगर सम टाइम आप तारों के बीच फंस गए.
आमिर पता है क्या बात है, तुम अब गाना सुनाने लगे हो कि लेकिन मैं तुम्हें जरा थोड़ा इधर रोकना चाहती हूँ. देखो
नहीं,
हम जो है ना, हम इतने ज्यादा दकियानूसी जो है ना, हमें होने की अब जरूरत नहीं है.
दकियानूसी क्या होता है?
जो है ना बहुत कंजर्वेटिव, थकेले होने की जरूरत नहीं है.
कंजर्वेटिव क्यों थकेले हो गए?
नहीं नहीं, कंजर्वेटिव जो होते हैं ना वो थकेले होते हैं बहुत ज्यादा. हम जो हमारी सोसाइटी है ना, दिन ब दिन वो जो है ना बहुत ही ज्यादा वो स्टोन एज में जाना शुरू हो गई है. आप देखें अगर किसी गाने में किसी लड़की ने कोई स्कर्ट पहन ली या कुछ कर लिया तो फिर उसमें अब ऐसे रोने की क्या बात है. आप देखिए जरा, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि कैलाश खेर हिंदू है ना, कैलाश खेर ने एक जो हमद गाई है, हम तो नहीं गाई, बिस्मिल्लाह के ऊपर उसने ना एक वो कलाम गाया है। अब वो अगर ये सोचे कि जी मैं तो हिंदू हूं, मुझे ये मुसलमानों वाली चीज क्या, और आप अगर वो सुनेंगे वो उसकी, वो आप अगर उसका कलाम सुने तो वो कह रहा है कि दुनिया का हर काम आप बिस्मिल्लाह कह के शुरू करो। देखो ना, तो इतने हम कंजर्वेटिव और दकियानूसी और छोटी नजर के हो जाएं कि इसने क्या पहन लिया, इसने क्या कह दिया, इसने क्या खा लिया, इसने इस तरह जिंदगी अब गुजरेगी नहीं। तो मैं बल्कि आपको चाहूंगी कि आप जरा कैलाश खेर का बिस्मिल्लाह लगाएं।
वो भी लगा देंगे।
हाँ, बिस्मिल्लाह आप लगाएं।
गाना जो है वो लाइनअप
नहीं नहीं, आप लाइनअप उसको खत्म करके आप बिस्मिल्लाह लगाएं। मैं जो है उस वक्त तक एक बात आपको सुनाती हूँ। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ना बड़े जबरदस्त कुछ एक इंटरव्यू है, आपने अगर देखा होगा ललन टॉप जो है वो, उसमें ना एक सीनियर इंडिया के जर्नलिस्ट हैं जो कि सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, वो और किसी चीज में इंग्लिश विंग्लिश में बात करते नहीं है। तो उसके अंदर आजकल ना वो नाना पाटेकर का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो नाना पाटेकर उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है। तो उसके अंदर आपको पता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जो है राजदीप सरदेसाई, वो उसके अंदर आ गए। तो राजदीप सरदेसाई को उन्होंने कहा कि तुम यहां पे क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि ये जो करते हैं जर्नलिस्ट लंदन टॉप जो चलाते हैं, तो ये मैं इनका काम बहुत एडमायर करता हूं। तो वहां पे काफी जनता आमिर बैठी हुई थी, तो नाना पाटेकर ने कहा कि अगर तुम इतना एडमायर करते हो तो तुम इनकी तरह काम क्यों नहीं करते हो, तुम अंग्रेजी में क्यों बातें करते हो, फिर तुम भी हिंदी में इस तरह किया करो ना। तो मतलब कहने का ये है कि आप हर किसी का जो अच्छा काम और अच्छी चीज जो होती है ना उसको आप एडमायर कर सकते हैं। अब आपको अगर पता हो कि राजदीप सरदेसाई जो है वो बहुत ह्यूज नेम है इंडियन जो जर्नलिज्म है उसका, और जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के इंटरव्यूज करते हैं, और उनके वालिद साहब जो थे वो भी कुछ क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, तो ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली ऑल्सो। लेकिन आप देखें उनको झाड़ दिया उन्होंने नाना पाटेकर साहब ने, और उन्होंने कोई मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने अपनी तारीफ नहीं की उस इवेंट पे आके कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूं। हालांकि नाना पाटेकर ने कहा मैं तुम्हारे वालिद को तुम्हें भी बड़ा एडमायर मैं करता हूं, लेकिन तुम इससे क्यों नहीं सीखते हो, तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते हो। तो राजदीप ने भी कहा कि हाँ मैं इनको बड़ा एडमायर। तो इस तरह किसी की अच्छी काविज को अच्छी चीज को एडमायर कर लेने से ना आपका कद कोई छोटा नहीं हो जाता। हम ये जो आपके लिए कलाम लगाने लगे हैं इस वक्त कैलाश खेर साहब का, ये इसी पर्सपेक्टिव में है कि एक हिंदू होके वो ये कितना प्यारा गा रहे हैं, और उसको वर्ड्स भी पता चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि कोई ऐसे कोई फ्रांसीसी के वर्ड्स हैं जो उसको समझ नहीं आ रहे, वो गा जो रहा है वो यही गा रहा है कि जी हर दुनिया का काम आप बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करें। अब एक हिंदू को आप सोचें कि बोलने की ये क्या जरूरत है, वो कह सकता था ना उसको म्यूजिक डायरेक्टर को कि मैं ये गाना क्यों गाऊं भाई, मुझे नहीं गाना ये गाना।
हमारे यहाँ मुझे नहीं गाना। क्रिश्चियंस वो हैं जिन्होंने नात पढ़ी है, सलीम रजा इज वन ऑफ, आयरन परवीन।
तो लेकिन हम ये नहीं करते ना, हम मुसलमान जो है ना हम उनकी कोई हिम नहीं गाएंगे, कोई हम उनका कोई कलाम नहीं गाएंगे। अगर किसी मुसलमान ने कोई बाइबल में से चीज पढ़ ली या कर लिया या उसको गा लिया, ओहो फिर देखो मुसलमान कैसे उसके खिलाफ हुए। अच्छा आप यहाँ पे बैठ के, हम आज का हमारा बल्कि क्वेश्चन भी यही रहेगा कि क्या आप जो है किसी ऐसी कोई दूसरे किसी के रिलीजन की ऐसी कोई आप चीज गाएंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि जरा थोड़ा सा अपने अंदर जो है
आपकी फरमाइश पे, क्योंकि आपने फरमाइश कर दी है, तो मैंने कहा
लगाएंगे, बड़ा प्यारा कलाम है।
टाइम जो है वो वैसे टॉप ऑफ दी आवर का आ गया है, थोड़ा सा हम सुन लेते हैं ताकि आपका मूड चेंज हो जाए, और उसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे। हमारा नंबर
416-620-1778। Bismillah, 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 Bismillah. Tere naam se shuru hua, tere naam pe khatam lila. गई ओ अल्लाह।